हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए, जिन महाराज ने जल्दी ही अमन के पिता अगवा होने का सारा सच तारापरी को बता दिया था। तारापरी के हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमन के पिता के गायब होने के पीछे इतना बड़ा भी कारण हो सकता है, और ऐसे कौन से सात मंत्र थे और सात रक्षक थे जिन्हें पिछले 15 सालों से इतने शक्तिशाली जिन महाराज होकर भी ये लोग भेद नहीं पाए थे। तारापरी ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो अब हर हाल में अमन के पिता को बचा कर रहेगी, और अब वो अमन के पिता ही नहीं तारा के भी पिता हैं। तो तारा ने सोच लिया था कि अमन की तपस्या पूरी होने से पहले पहले वो करिश्मा जी के पति का पता लगाएगी। तारा को इस तरह से सोचों में गुम देखकर जिन महाराज बोले थे, क्या हुआ तारा बेटी, आप क्या सोच रही हो? जिन महाराज की बात सुनकर तारा मुस्कुराने लगी थी और बोली थी, दादा महाराज, मैं यहाँ आपसे इजाज़त लेने के लिए आई हूँ। आज से मैं आपके बेटे अमरेंद्र सिंह राठौड़ को ढूंढने के लिए जाना चाहती हूँ। जैसे ही तारा ने ये कहा, जिन महाराज परेशान हो गए थे और बोले थे, ये क्या कह रही हो बेटी, तुम अच्छी तरह से जानती हो इस वक्त तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती हो। इस वक्त तुम पर खुद एक खतरा मंडरा रहा है, और वैसे भी तुम यहाँ अपने जिस मकसद के लिए आए हो सबसे पहले तो वो पूरा करना ज़रूरी है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, और अगर इस बीच तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती है। जिन महाराज की बात सुनकर तारा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई थी, लेकिन फिर बोलने लगी थी, आप ठीक कह रहे हैं दादाजी महाराज, लेकिन मैं अब अमन से प्रेम करने लगी हूँ, और मैं अमन की जिंदगी में किसी भी तरह का कोई दुख दर्द नहीं देखना चाहती हूँ, और अमन भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही अमन ये 7 दिन की कैडी तपस्या कर रहे हैं, ताकि उनके पास कितनी सारी शक्तियाँ जमा हो जाएं और वो उस राक्षस का मुकाबला कर पाएं। तो बदले में मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, और फिर मैं करिश्मा मॉम से वादा किया है कि मैं उनके पति को हर हाल में ढूंढ कर लाऊंगी। तारा के बात सुनकर जिन महाराज हैरान हो गए थे। जिन महाराज और बोले थे, बेटा अब तुमने डिसीजन ले ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अनुष्ठान पूरा होने के बाद ही तुम्हें वो जगह पता चल जाएगी कि जिस जगह पर उस काली शक्तियों के गुरु ने हिडिम्बा और मेरे बेटे को रखा हुआ है। इसके लिए तुम्हें पहले अनुष्ठान करना होगा। अगर तुम एक अनुष्ठान पूरा कर पाई और उस सांप को हरा पाई तो फिर तुम्हें दूसरी चुनौती का सामना करना होगा। तारा हैरानी से जिन महाराज की बात सुन रही थी। तारा बड़े ही ध्यान से जिन महाराज की बात सुन रहे थे, और उसने अब पूरा मन बना लिया था कि वो अगर हाल में ये अनुष्ठान भी पूरा करके रहेगी और अमन के पिताजी को ढूंढ कर रहेगी। तब तारा ने वहाँ से जाने से पहले एक और ख्वाहिश जिन महाराज के सामने रखती थी, दादा हराज, क्या मैं जाने से पहले एक बार अमन को देख सकती हूँ? क्योंकि तारा का दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसे बार बार अमन की बहुत याद आ रही थी, और क्योंकि अब अमन उसके इतने करीब था तो वो उसे देखना चाहती थी। लेकिन जिन महाराज ने उसे साफ साफ मना कर दिया था और कहा था, नहीं बेटा, तुम उसे नहीं देख सकते हो, क्योंकि मैंने उसे विशेष मंत्रों के द्वारा अदृश्य कर दिया है। अगर तुमने उसे देखने की कोशिश की तो वो भी तुम्हें देख लेगा, और इस तरह से तुम दोनों ही अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। तब तारा ने जिन महाराज की बात मान ली थी और फिर खुद के इमोशन पर काबू करते हुए कहा था, नहीं नहीं जिन महाराज, मैं अपने मकसद को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, मैं चली जाती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है अगर अमन आपकी छाँव में है तो आप उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखेंगे। ऐसा कहकर तारापरी अमन की निशानदेही की ओर देखते हुए वहाँ से चली गई थी। साथ ही साथ जिन महाराज ने जिस जिन के कान बंद किए थे उसके कान खोल दिए थे, और वो जिन भी जिन महाराज को प्रणाम करके तारापरी के पीछे पीछे चल दिया था। जिन महाराज ने उस जिन को अच्छी तरह से समझा दिया था कि तारा यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई है, ये बात तुम करिश्मा बेटी को नहीं बताओगे, और जिन महाराज का हुक्म था तो भला को किसी की टालने की हिम्मत नहीं थी। जल्दी ही तारा उस बगीचे से बाहर निकल आई थी और अमन के और घर की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर विक्रांत रंधावा ने अपने अपने प्रतिरूप को वहां से हटा दिया था और खुद अपने चेयर पर बैठ गया था, और वहां बैठकर उसने सबसे पहले एक बड़े से लैपटॉप की स्क्रीन में अमन के घर के सीसीटीवी कैमरा ऑन कर लिए थे, जो कि उसने हैक कर लिए थे, ताकि वो ये देख सके कि तारा कब घर आएगी, क्योंकि उसने सोच लिया था अगर तारा कहीं ना कहीं गई है तो लौटकर तो घर उसे आना ही है, और तारा के घर आते ही वो भी किसी न किसी बहाने से घर चला जाएगा, क्योंकि तारा के बगैर वो एक पल नहीं रह सकता है, और ऊपर से उसने आज उसे देखा भी नहीं है। उसे देखने के लिए ही वो उसके घर पर गया था, लेकिन तारा उसे नहीं मिली थी और वो गुस्से से वापस ऑफिस में आ गया था। विक्रांत रंधावा ने ऑफिस में आकर किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया था। हालांकि मल्लिका की नज़र बार बार विक्रांत रंधावा पर जा रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रंधावा के सामने जा सके, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी। विक्रांत ने उसे साफ साफ मना किया हुआ है कि बिना किसी मतलब के मैं उसके पास न जाऊँ। अगर वो उसके पास चली गई तो यकीनन विक्रांत रंधावा उसे कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा सकता था, और मल्लिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि विक्रांत रंधावा कितना ही ज्यादा शक्तिशाली था। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में राधिका के पिता को बार बार विक्रांत रंधावा का इस तरह से बैठना बड़ा ही अजीब लग रहा था। वो सोच रहा था कि क्या इस बारे में वो किसी को बता दे, क्योंकि राधिका के पिता को तारा परी ने अपनी शक्तियों के द्वारा ठीक किया था, तो राधिका के पिता के अंदर तारा परी की थोड़ी सी शक्तियों का अंश आ गया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, तो इसीलिए उन्हें विक्रांत रंधावा को देखकर बार बार शक हो रहा था। राधिका के पिता को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था वो इसके बारे में सोच रहे थे। वो कोई आम इंसान नहीं था, इस तरह से उसके बारे में सोचकर उन्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन वो अब विक्रांत रंधावा के बारे में सोच चुका था। तारा परी की शक्तियां होने के कारण उसे बार बार यही एहसास हो रहा था कि जरूर इस आदमी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो इस बारे में सीधी सीधी तारा बेटी से बताएंगे या फिर सीधा सीधा अमन सर से। इसीलिए वो अपनी सोचों को झटका देते हुए अपने काम पर जुट गए थे। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित उस लड़की गुड्डी को लेकर अपने महल में चला गया था, और उसने महल के अंदर जाने से पहले ही उसे लड़की गुड्डी से शादी कर ली थी। शादी के नाम पर अगर अमित ने कुछ किया था तो कोर्ट मैरिज किया था, क्योंकि वो तमधाम के साथ शादी नहीं करना चाहता था, और उसने अपने ही दो गुलाम को गवाह के तौर पर खड़ा कर लिया था और गुड्डी से शादी कर ली थी। काली शक्तियों का मालिक अमित केवल गुड्डी को ये यकीन दिलाना चाहता था कि वो वाकई उसे पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, इसीलिए उसने ये कोर्ट मैरिज का नाटक किया था ताकि गुड्डी अमित की ओर से बेफिक्र हो जाए।
अमित आज पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा खुश था। एक तो उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल गई थी, साथ ही साथ वो इस बात को लेकर भी खुश था कि अगर उसे लड़की से उसे अपना पीछा छुड़ाना चाहे तो आसानी से छुड़ा सकता था, क्योंकि वो एक भीखरण लड़की थी और वो उसकी जान कभी भी ले सकता था और उसे पूछने वाला कोई नहीं था। अमित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जल्दी ही अमित उस लड़की को सज धजा कर अपने महल नुमा घर में ले गया था, और जल्दी उसको उसे लाल कमरे में ले जाकर उसने उसे जोरों से गले लगाते हुए कहा था, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी जल्दी मेरी जिंदगी में आ जाओगे। तुम नहीं जानती तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारी खूबसूरती का कायल सा हो गया हूँ। तुम्हारे अलावा मुझे कहीं कुछ और दिखाई नहीं देता है। अमित ने दो तीन और रोमांटिक लाइन बोलते हैं उस लड़की को जोरों से किस करना शुरू कर दिया था, और फिर उसे लड़के के होठों पर हॉट रखकर वो उसे शिद्दत से चूमने लगा था। अमित को रह रहकर उसे लड़की का कटीला बदन दिखाई दे रहा था। जल्दी उसने अपने हाथों को उसके पूरे जिस्म पर चलाना शुरू कर दिया था, और अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे लड़की के और अमित के कपड़े वही फर्श पर पड़े हुए थे। उसे लड़की ने किसी भी तरह की कोई आनाकानी नहीं की थी, क्योंकि वो अमित को सच में ही अपना पति मानने लगी थी, और वो अच्छी तरह से जानती थी उसके पति का उसके जिस्म पर क्या हक है। जल्दी ही उसे लड़की की आवाजें उसे कमरे में गूंजने लगी थीं। उस लड़की के साथ पूरे 3 घंटों तक रिश्ता बनाने के बाद जैसे ही अमित उसके कमरे से बाहर आया तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगा था। अमित को अचानक से अपने जिस्म में काफी ज्यादा कमजोरी सी महसूस होने लगी थी। ये उसके साथ पहली बार हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ है, और उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके जिस्म का आधे से ज्यादा हिस्सा बेहद कमजोर हो गया हो और उसकी शक्तियाँ कहीं खो सी गई हों। अमित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। जब अमित को लगा कि अगर उसने जल्दी से कुछ नहीं किया तो वो चक्कर खाकर किसी भी वक्त कहीं भी गिर सकता है, तो इसीलिए अमित जल्दी से अपने एक विशेष कमरे में चला गया था। धन्यवाद।